स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 29 मार्च दिन बुधवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। ब्रिटेन ने आज यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की।
Now that the decision to leave has been made and the process is underway, it is time to come together.
उत्तर प्रदेश और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद झारखंड में भी ऐसे कसाईखाने बंद। दुनिया जहान में आज जानिए ओबामा केयर के बारे में, जिसे लेकर अमेरिका में ट्रंप सरकार और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच मचा घमासान।
जब से ओबामा केयर आई है तब से कम 60 बार इन्होंने इसे खत्म करने की कोशिश करी है यूएस कांग्रेस में।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की 44 साल पुरानी सदस्यता खत्म करने के लिए औपचारिक रूप से पत्र भेज दिया है। इसके साथ ही 2 चलने वाली बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें भविष्य के लिए यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंधों की दशा दिशा तय होगी। ब्रितानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद को बताया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ सहयोगी और करीबी मित्र बना रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मौके का इस्तेमाल एक बेहतर ब्रिटेन बनाने में करना चाहती हैं। यूरोपीय परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि इस वक्त खुश होने की तो कोई वजह नहीं, लेकिन ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले ने गुट के बाकी सदस्यों की प्रतिबद्धता और एकजुटता बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज और जर्मनी के डॉयचे बॉयस के प्रस्तावित विलय पर रोक लगा दी है। इसके तहत यूरोप का सबसे बड़ा एक्सचेंज बनाने की तयारी थी, लेकिन यूरोपीय संघ के प्रतियोगिता आयुक्त मार्गरेट वेस्टागर ने कहा कि ये करार यूरोप में एक तरह का एकाधिकार बना देता। मार्गरेट वेस्टागर ने कहा, आयोग की भूमिका ये तय करने की है कि यूरोपीय संघ में विलय प्रतियोगिता को खत्म ना करें, और हम इस विलय को उन शर्तों पर मंजूरी नहीं दे सकते थे जिनका प्रस्ताव दोनों कंपनियों ने दिया था। पिछले महीने लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने यूरोपीय आयोग की उस मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें उसके शेयरों को इतालवी ट्रेडिंग मार्केट MTS को बेचने की बात कही गई थी। भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST से जुड़े 4 बिलों को पेश किया है, जिन पर बहस चल रही है। सरकार इस कानून को इसी साल 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। इसके लिए विपक्षी दलों की मांग के अनुरूप बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किए गए हैं। भारत में अफ्रीकी छात्रों के एक संघ ने अपने सदस्यों को दिल्ली के पास नोएडा के अपने घरों में रहने की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि उन्हें हिंसा और नस्ली हमले का सामना करना पड़ा है। इस गुट ने बुधवार को एक और हमले की बात कही, जिसमें केन्या की एक महिला छात्र को निशाना बनाया गया। भारत की मीडिया में ये खबर आई है कि उस छात्रा के साथ मारपीट की गई। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे वहां से छुट्टी दे दी गई। मंगलवार को पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जब लोगों की एक भीड़ ने कई अफ्रीकी छात्रों पर हमला बोल दिया। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता अहमद कथरादा को जोहानिसबर्ग में दफनाया जा रहा है। कई राजनेता इस मौके पर वहां पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति क्लागलेमा मोतलांते ने एक खुला पत्र पढ़ा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से पद छोड़ने की मांग थी। राष्ट्रपति जुमा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कथरादा के परिवार ने इसके लिए अनुरोध किया था। अंकल कैथी के नाम से मशहूर कथरादा का मंगलवार को निधन हुआ था। लालो इसी उच्चीबा कथरादा के करीबी मित्रों में थे, जो उनके साथ जेल में भी रहे। उन्होंने कहा, बीते सालों में वो मेरे लिए एक ताकत और बहुत बड़ा सहारा रहे हैं। खासतौर पर रोबन आइलैंड की जेल में बीते अकेलेपन के उन दिनों में उनकी वजह से मैं उन मुश्किल सालों में इज्जत के साथ जी सका। वो मेरे जीवन के उन 2 सितारों में हैं जिन्होंने मेरे सफर को लगातार रोशन रखा। वो नेल्सन मंडेला के करीबी मित्र थे और उनके साथ जेल में उन्होंने कई साल बिताए। पाकिस्तान के बहुचर्चित 3 भाइयों के हत्याकांड में 6 आरोपियों को कोर्ट से बरी करने के बाद उनके परिवार ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इससे पहले लोअर कोर्ट ने इन लोगों को सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने पलट दिया है। जिन 3 भाइयों की हत्या की गई थी, उन्हें गाना गाती महिलाओं के गुट के साथ नाचते हुए दिखाया गया था। ये घटना कोहिस्तान इलाके की है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वो उन महिलाओं के नजदीकी रिश्तेदार हैं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या उन महिलाओं की भी उनके रिश्तेदारों ने ही हत्या की थी। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया की आज औपचारिक शुरुआत कर दी है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत यूरोपीय संघ से अलग होने की चिट्ठी यूरोपीय परिषद को भेज दी है। पिछले साल जून में हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में मतदान किया था। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने संसद में कहा कि 2 साल के भीतर किसी सर्वसम्मत समझौते पर पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये एक जरूरी कदम था और इसके लिए ब्रिटेन के लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है।
Now that the decision to leave has been made and the process is underway, it is time to come together.
अब जबकि यूरोपीय संघ को छोड़ने का फैसला लिया जा चुका है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, इसलिए सबके साथ आने का वक्त है। इस महान राष्ट्रीय पल को एक राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है, एक ऐसा प्रयास जो ब्रिटेन के भविष्य को आकार देगा, इसलिए आइए मिलकर हम ये लक्ष्य हासिल करें।
ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे कह रही थी कि ये एक ऐतिहासिक पल है और उन्होंने पूरे देश से एकजुट रहने की अपील की। उसके बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि विपक्ष इस ऐतिहासिक घड़ी में सरकार के कदम के साथ खड़ा है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा।
इफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू यूनाइट द कंट्री एज शी सेज शी एम्स टू डू,
अगर प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एकता रखना चाहती हैं जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखना चाहती हैं, तो सरकार को देश की आवाज सुननी होगी, परामर्श लेना होगा और सबका प्रतिनिधित्व करना होगा, न कि केवल कंजर्वेटिव पार्टी के विचारकों की सलाह पर अमल करना होगा।
ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। थोड़ी देर पहले मैंने बात की लंदन में हमारी सहयोगी नेहा भटनागर से और सबसे पहले यही पूछा कि ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा।
जी अमरीश, जैसा कि आपने कहा, ये पहली बार इस तरह से औपचारिक शुरुआत हुई है और किसी और देश ने इससे पहले ये किया नहीं है, तो ये प्रक्रिया असल में किस तरह से पैन आउट होगी देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि अब ये होगा कि यूरोपीय के जो ईयू के जितने भी देश हैं उनके 27 नेता जो हैं वो यूरोपीय काउंसिल में बैठते हैं। अब ये जो यूरोपियन काउंसिल है वहाँ पर इसको लेकर बातचीत होगी, गाइडलाइंस तय होंगी कि आखिरकार किस तरह से ब्रेग्जिट को अंजाम दिया जाए, कौन कौन से वो पैरामीटर होंगे, कौन कौन से वो बातें होंगी, इसकी गाइडलाइंस तय होंगी। इस सब के बाद अब यूरोपीय कमीशन वो फिर ब्रिटेन से बात करेगा कि जी हमने ये गाइडलाइंस तय की हैं, अब इन गाइडलाइंस के मद्देनजर आगे बातचीत बढ़ाई जाएगी। इतने साल से जो भी ट्रीटीज हुए हैं ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के और देशों के बीच, जो ईयू ने इकट्ठे अपने ट्रीटीज और एग्रीमेंट बाकी दुनिया के साथ की हैं, इन सारे ट्रीटीज एग्रीमेंट्स डील सब को फिर से खंगाला जाएगा, उनकी पड़ताल की जाएगी कि आखिर इनमें से अब ब्रिटेन के साथ क्या होगा, ईयू के बाकी देश क्या चाहेंगे, और इस सब में ईयू के तमाम और देशों की भी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी डील फिर तय की जाएगी उसको फिर वापस यूरोपीय यूनियन के जो भी देश हैं उनको फिर उसमें हामी भरनी होगी। लेकिन इस वक्त स्थिति काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जहां अपने आप ही उनके अपने जनमत संग्रह की बात हो रही है, वहां पे भी ये बातें चल रही हैं रेफरेंडम की कि ईयू के साथ रहना चाहिए या ईयू से अलग हो जाना चाहिए। तो इस सब के बीच वहां के नेता किस तरह से ये बातें सोचते हैं, किस तरह से वो ब्रिटेन के साथ होने वाली डील को देखेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये सारा सब ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट डील के ऊपर सहमति जब हो जाएगी उसके बाद फिर से उसको यूरोपियन काउंसिल के पास भेजा जाएगा। अब इस ड्राफ्ट डील पर कम से कम 20 उन देशों को इसे पास करना पड़ेगा जिनकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो ईयू की वो 65% संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें इसका पारित करना, उनके जरिए इनको पारित होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको उस डील को फिर ईयू की संसद भेजा जाएगा, फिर वहाँ फिर से उसको पारित होने के लिए बहुमत चाहिए। तो ये सब प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, सहमति नहीं बन पाती तो फिर और 2 साल की अवधि खत्म हो गई तो ब्रिटेन एक तरह से क्रैश लैंड कर जाएगा कि बिना किसी डील के ईयू के साथ वो बाहर हो जाएगा। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोग जरूर देखना चाहते हैं कि व्यापार के लिए क्या होगा, क्योंकि अब तक तो ब्रिटेन एक बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा था और उस तरह से व्यापार हुआ करता था दुनिया भर के साथ। लेकिन अब आगे क्या होगा, ब्रिटेन की यूरोपीय संघ के बाकी देशों के साथ किस तरह की डील रहेगी, पूरे यूरोपीय संघ के साथ क्या रहेगा, अब वो हकीकत सामने आएगी कि असल में होगा क्या।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की पूरी प्रक्रिया और इसकी पेचीदगियों की जानकारी दे रही थी नेहा भटनागर। आपको बता दें कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने ब्रिटेन के कदम के बारे में कहा कि ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि ये कोई खुशी का दिन है, लेकिन ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के फैसले ने संघ के बाकी सदस्यों को और ज्यादा प्रतिबद्ध और एकजुट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अब ये है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने से होने वाले नुकसान को किस तरह नियंत्रित किया जाए। और अब भारत की तरफ लौटते हैं। उत्तर प्रदेश और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम चलाए जाने के बाद झारखंड में भी सभी बूचड़खाने बंद हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को अवैध बूचड़खानों को 72 घंटे के अंदर बंद करा देने का आदेश दिया था, लेकिन इस सरकारी आदेश की वजह से हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ज्यादातर प्रभावित लोग इस पर खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं और सरकार भी ये नहीं बता पा रही है कि झारखंड में आखिर कितने वैध बूचड़खाने हैं। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
रांची के कुरैसी मोहल्ले में लोगों की सुबह इस अजान से होती है। कल सुबह भी यह आवाज लोगों के कानों में पहुंची तो लगा कि आज का दिन ठीक गुजरेगा। कुछ देर बाद जब अखबार आया तो इन्हें झारखंड में सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने के सरकारी फैसले की जानकारी मिली। इसके साथ ही पूरे मोहल्ले में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मांस की दुकानें नहीं खुली और जानवरों को काटने का काम भी बंद रहा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके घर का चूल्हा अब कैसे जलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने 2004 के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण ही नहीं किया है। नतीजतन रांची में चलने वाले सभी बूचड़खानों पर अवैध होने का ठप्पा लग चुका है। इस व्यापार में लगे तबरेज कुरैसी ने बीबीसी से कहा कि सरकार को लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त देना चाहिए था। उन्होंने कहा,
सबसे पहली बात तो सरकार ने जो कहा वो तो हम लोगों ने मान लिया, लेकिन मानने से पहले का सवाल ये है कि हम लोगों को पहले तो कभी लाइसेंस मिला नहीं और जो मिला उसको रिन्यूअल किया नहीं, तो इससे क्या होगा कि अब तो इतना आदमी जो इस धंधे से जुड़ा हुआ है तो बेरोजगार हो जाएगा, और इस तरह के अचानक फैसले से सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग यहाँ पे 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, उनका परिवार 10 हज़ार से ज़्यादा है, तो ये लोग सारा बेरोजगार हो गए हैं।
आज दोपहर जब मैं इसी मोहल्ले की रमीला खातून के घर पहुंचा तो वे आटा गोथ रही थीं ताकि अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक सकें। उनके शौहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका है। 14 साल का बेटा एक बूचड़ खाने में काम करता था, इसी से उनके परिवार की परवरिश होती थी। अब वहाँ बंदी है तो कल के खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रमीला खातून ने बीबीसी से कहा,
दिक्कत यही है कि हम लोग का जो रोजी रोजी है, हम लोग का सब चीज़ का मनाया हुआ, हम लोग बाल बच्चा को हम लोग क्या खिलाएंगे, हम लोग का बचपन ही हम लोग का ये हाल चल रहा है। इसी करने में मेरा आदमी खत्म हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का यही इतने चलता है। भूख दुख हम लोग का बड़ी मुसीबत हम लोग काट रहे हैं।
झारखंड में चल रहे अधिकतर बूचड़खाने अवैध हैं। रांची में तो एक भी लाइसेंसी बूचड़खाना नहीं है क्योंकि सरकार ने इनके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोई अभियान ही नहीं चलाया। कुरैसी मोहल्ले में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे लाइसेंसी बूचड़खाने भी नवीनीकरण नहीं होने के कारण अब अवैध की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे में राज्य के हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। सरकार चाहे तो इसकी मियाद बढ़ाकर इन मोहल्लों में रौनक वापस ला सकती है, लेकिन ऐसा होगा इसकी संभावनाएँ काफ़ी कम हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से लगातार उन फैसलों को पलट रहे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में लिए गए थे। इसी क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति को रद्द कर दिया है। इससे ठीक पहले ट्रंप ओबामा केयर यानी स्वास्थ्य सेवा में सुधार संबंधी कानून को खत्म करने के लिए विधेयक लाए, लेकिन समर्थन न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। अमरीकियों को मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और राष्ट्रपति ट्रंप ओबामा केयर को क्यों खत्म करना चाहते हैं, दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा ने इसी की पड़ताल की है।
दुनिया जहान। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में यूं तो कई मुद्दे उछले, लेकिन जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवाद रहा उनमें से एक मुद्दा ओबामा केयर का था। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार अभियान के दौरान हर मंच पर लगातार इसे बंद करने की वकालत करते रहे।
We're going to get rid of Obamacare, which is a disaster. Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare.
ट्रंप जब राष्ट्रपति बन गए तो चुनावी वादे के तहत ओबामा केयर को बंद करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। ट्रंप ने तैयारी की। ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर विधेयक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा से पारित कराने की।
द हाउस बिल एंड्स द ओबामा केयर नाइटमेयर। इट्स गोइंग टू बी टेरिफिक। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। टुडे द हाउस इज वोटिंग टू रिपील एंड रिप्लेस द डिजास्टर नोन एज ओबामा केयर। वी विल सी व्हाट हैपेंस। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज वोट।
मगर यह हो न सका। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रॉयन के मुताबिक जब यह साफ हो गया कि बिल के पक्ष में रिपब्लिकन प्रतिनिधियों को जरूरी वोट नहीं मिलेंगे तो पर्याप्त समर्थन न जुटा पाने के चलते मतदान के ठीक पहले ट्रंप ने विधेयक को वापस ले लिया। स्पीकर पॉल रॉयन।
वी केम रियली क्लोज टुडे बट वी केम अप शॉर्ट। दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग डे फॉर अस। डूइंग बिग थिंग्स इज हार्ड।
पर नए हेल्थ केयर बिल के पारित न हो पाने की एक बड़ी वजह उनके अपने रिपब्लिकन सदस्यों के बीच मतभेद भी था। दोनों सदनों में रिपब्लिकन सांसदों का बहुमत है, लेकिन कई खबरों में कहा गया कि रिपब्लिकन सदस्य ट्रंप के नए विधेयक के मसौदे के खिलाफ थे। तो ट्रंप की अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन के लोग क्यों नए मसौदे के खिलाफ थे? बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय कहते हैं,
रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक गुट है जिसका कहना था कि ये बिल ओबामा केयर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा और उन्होंने इसे ओबामा केयर लाइट का नाम दिया। ये गुट पार्टी का बिल्कुल कंजर्वेटिव धड़ा है और इनकी दलील थी कि हमने वोटरों से वादा किया था कि इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जबकि इस नए कानून में ओबामा केयर की जो खामियां हैं वो सब कुछ वैसे ही बरकरार है। इनका ये भी कहना था कि इस बिल से इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी और वोटरों के सामने उन्हें उसका खामियाजा उठाना होगा। वहीं पार्टी के अंदर जो मॉडरेट कहलाने वाला धड़ा है उनमें से भी बहुत लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनकी सोच है कि इस बिल की वजह से ऐसे लोग जो किसी तरह के इंश्योरेंस से कवर नहीं होंगे उनकी तादाद खासी बढ़ जाएगी। एक अंदाजा है कि अभी जो मौजूदा कानून है ओबामा केयर उसके तहत ये संख्या करीब 2.5 करोड़ है जिनके ऊपर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, और नए बिल से ये 2018 तक 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और साथ ही बुजुर्गों को जो प्रीमियम देना पड़ता है उसमें काफी इजाफा हो जाएगा, और इसमें रिपब्लिकन वोटरों की खासी तादाद है और इसलिए भी पार्टी के कई सदस्य इसके खिलाफ थे।
दरअसल ये लड़ाई रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट की भी है। नया हेल्थ केयर विधेयक पारित न हो पाने के लिए ट्रंप ने डेमोक्रेट सांसदों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ओबामा केयर अपने आप नष्ट हो जाएगा।
I think we have to let Obamacare go its way for a little while and we'll see how things go. I'd love to see it do well, but it can't. I mean, it can't. It's imploding and soon will explode and it's not going to be pretty.
तो फिलहाल स्थिति यह है कि अमेरिका को ओबामा केयर पर ही चलना होगा। पर सवाल यह है कि ट्रंप ने जिस ओबामा केयर को खत्म करने के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनाया वो क्या है? वॉशिंगटन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही से मैंने पूछा कि ओबामा केयर में समस्याएं क्या हैं और ट्रंप इसके पीछे क्यों पड़े हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंश्योरेंस पॉलिसी में ये थी कि इसके प्रीमियम्स बढ़ने लगे, मतलब कि जितना आपको हर साल पैसा देना होता है वो भी बढ़ने लगा। तो आइडिया ये था कि यंग लोग अगर साइन करेंगे तो जो बीमार लोग हैं और जो उम्र वाले लोग हैं उनको फायदा होगा और सब कुछ बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जो 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स थे वो बहुत कम हो गए, तो वो निकल आए। तो इससे और भी प्रॉब्लम शुरू हुई। रिपब्लिकन्स ये सोचते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो जिनके पास कम पैसा है उनको क्यों सब्सिडाइज करें, ये मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि हिस्टोरिकली सबसे पहली बार ये बात उठी थी कि अमेरिका में हेल्थ केयर सबके पास होनी चाहिए, वो हैरी ट्रूमन के जमाने में हुई थी। तो उस समय एंटी कम्युनिज्म बहुत यहाँ पे चल रहा था और जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने इसको सोशलाइज्ड मेडिसिन के नाम से इसको बदनाम कर दिया। जब से ओबामा केयर आई है तब से कम 60 बार इन्होंने इसे खत्म करने की कोशिश करी है यूएस कांग्रेस में, पर हर बार इनके पास इतने वोट्स नहीं थे। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको देखा है, इस ओबामा केयर को।
faced with crisis, we did not shrink from our challenge. We overcame it. We did not avoid our responsibility. We embraced it. We did not fear our future. We shaped it.
ओबामा केयर तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बराक ओबामा ने पारित कराया था। वैसे इसका नाम है पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट। 1960 के बाद अमरीकी लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में ये सबसे बड़ा सुधार था। इसका मकसद क्या था और क्यों ये विवाद का विषय बन गया?
देखिए, मुख्य रूप से तीन कारण है, सैद्धांतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। ओबामा केयर का बुनियादी उसूल एक तरह से था कि जो अमरीकी सीधे किसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने की क्षमता रखते हैं उनका प्रीमियम महंगा करके उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो सरकारी लिस्ट से इंश्योरेंस खरीदते हैं। और इसे रिपब्लिकन पार्टी ने एक तरह की सोशलिज्म की तरह देखा। दूसरा कि आर्थिक रूप से ये नुकसानदेह है, ये उनका मानना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन लोगों के प्रीमियम्स और बढ़ा रही हैं जो सीधा उनसे खरीद रहे थे। इस वजह से नौजवान तबका जो काफी हद तक स्वस्थ है वो अब इसे नहीं खरीदेगा और कंपनियों का नुकसान और बढ़ेगा, कीमत और बढ़ेगी। तीसरा, बरसों से इस बात पर यहाँ सियासी जंग चल रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हो या सरकारी हो, और रिपब्लिकन्स जैसा कि आप जानते हैं हमेशा सरकार को छोटा रखने के हक में रहे हैं।
नए स्वास्थ्य विधेयक को जिसे कि ट्रंप पारित कराना चाहते थे उसमें और ओबामा के समय पारित विधेयक में क्या अंतर है? अगर ये पारित हो जाता तो क्या नफा क्या नुकसान? सीमा सुरोही।
कई अंतर हैं, जैसे ओबामा केयर के अंदर सबसे बड़ा जो उसका एक मुद्दा था उसमें मेडिकेड और मेडिकेयर जो दो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट चलाती है गरीब लोगों के लिए, उम्र वाले लोगों के लिए, उसको बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से 20 मिलियन अमेरिकन्स के पास हेल्थ केयर आ गई थी। तो अब ट्रंप केयर और ये जो रिपब्लिकन्स हैं वो कह रहे हैं कि उसको वापस ले आएंगे, उसको खत्म कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। एक तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे जिनके पास हेल्थ केयर नहीं थी उनको सब्सिडीज मिलती थी, वो सब भी खत्म कर देंगे ये लोग। एक और था कि आपको अंडर ओबामा केयर साइन अप करना ही था, मतलब ये अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपको फाइन पड़ेगा। तो जो पेनल्टीज थी कंपनीज के ऊपर कि अगर आप हेल्थ केयर नहीं देंगे अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को, ये सब जो पेनल्टीज हटा दी जाएंगी। और एक और चीज थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से कि जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो भी गुस्सा है इस बात पे। ओबामा केयर के अंदर जो उम्र वाले लोग उनको एक लिमिट थी कि उनसे आप इतना प्रीमियम करेंगे, मतलब 3 गुना आप उनसे प्रीमियम ले सकते हैं कंपेयर टू द यंग पर्सन। अब जो है ट्रंप केयर के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी बुढ़े लोगों से 5 गुना चार्ज कर सकती हैं। बेसिक बात ये है कि जो लोग गरीब हैं जिनको फायदा हुआ ओबामा केयर के नीचे वो सब हटा दिया जाएगा और ये वापस पूरा इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में आ जाएगा। जो वो चार्ज करना चाहेंगे वही करेंगे जैसा कि पहले होता था।
नए विधेयक को लेकर जनता में भी काफी नाराजगी दिखी थी। एक हालिया सर्वे में सिर्फ 17% लोगों ने इसे सही ठहराया था। तो आने वाले दिनों में ओबामा केयर का भविष्य क्या होगा?
देखिए, फिलहाल इस बात के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं कि प्रशासन या रिपब्लिकन पार्टी किसी नए बिल की तैयारी करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि तब तक वो कुछ नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट्स उनके पास नहीं आते स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में ओबामा केयर खुद ही ध्वस्त होने की कगार पर है। तो एक अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन सियासत में कब नया मोड़ आ जाए ये कोई नहीं कह सकता।
तो फिलहाल ओबामा केयर बनाम ट्रंप केयर की जंग जारी है और इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में है वो अमरीकी जनता जो सेहतमंद जिंदगी की तलाश में है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31, 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,410, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
दिल्ली का मशहूर रीगल सिनेमाघर बंद होने वाला है। किसी जमाने में यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का जमावड़ा हुआ करता था और दिल्ली के लोगों में भी रीगल में सिनेमा देखने जाने का एक क्रेज हुआ करता था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक सिनेमाघर को मल्टीप्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है। सिनेमा हॉल प्रबंधकों ने पुराने जमाने के जुनून को दोबारा जिंदा करने के लिए राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर और संगम को आखिरी शो के रूप में दिखाने का फैसला लिया है। सुनिए बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान की रीगल सिनेमा से ये रिपोर्ट।
पंखों का ये शोर और ये जो आवाज में गूंज है, ये आ रही है आपको रीगल सिनेमा हॉल से, दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक ऐसी जगह जहां पर लोगों से बोल दिया जाए रीगल कहाँ है, आपको एक मिनट में आंसर जवाब पता लग जाएगी कहां पर है रीगल। मैं इस समय इस थिएटर में हूं जो कि 31 मार्च को बंद होने वाला है। 1932 से चल रहा है ये थिएटर, कमाल का थिएटर है। आखिरी फिल्म यहां पर फिल्लौरी लगी है जिसको देखने बहुत ही कम लोग आए हैं। क्या कारण है, किस वजह से ये बंद हो रहा है?
इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कनॉट प्लेस में 2-3 बिल्डिंग की छत गिरी है। छत गिरने के बाद में NDMC ने सब पुरानी बिल्डिंग को नोटिस भेजा, हमें भी नोटिस आया। हमने टाइम भी मांगा, हमें टाइम भी दिया। उन्होंने कहा बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिएगा, जो हम नहीं दे पाए क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट हमें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रिस्क है। तो इस रिस्क को देखते हुए हमने डिसीजन किया कि सिनेमा हॉल को बंद किया जाए।
तो अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा?
यहाँ मल्टीप्लेक्स की प्लान है,
मल्टीप्लेक्स। ये थे रीगल सिनेमा के फाइनेंस मैनेजर AS वर्मा। मगर इस थिएटर से जुड़ी कई लोगों की यादें सुनते शुक्ला साहब, कमाल की मुझे बिल्कुल रीगल मुझे आपकी बिल्कुल
रियल रियल
रीगल 31 तारीख को बंद होने वाला है। क्या यादें हैं आपकी रीगल के साथ?
बहुत यादें जुड़ी है जी, हमारे तो यहाँ पे आधी जिंदगी बीत गई। 35-70 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए।
करते क्या है आप यहाँ पे?
मैं वहाँ कंटिन्यू काम करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ मैं। सारा तरफ वहाँ टिकट भी फाड़ू, लाइन भी लगवाऊँ, वहाँ गेट पे भी बैठा हूँ, मालकों को चाय पानी भी पिलाऊँ, सारा काम मेरा ही है यहाँ का।
तो कमाल है, मुझे हो तो शुक्ला जी जैसी हो। रीगल सिनेमा के अकाउंटेंट AS वर्मा इस थिएटर में पिछले 40 साल से, क्या कहा उन्होंने?
रीगल थिएटर जो है वो दिल्ली का सबसे पहला सिनेमा हॉल है, प्रीमियर थिएटर बोलते हैं उसको, और दिल्ली से इसकी बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। पहला सिनेमा हॉल था, बड़ी हाई डिग्निटी यहाँ आती थी, सिलेक्टेड मूवीज लगती थी, और उस टाइम का पहला सिनेमा है और बहुत अच्छा सिनेमा हॉल में उसका नाम था।
अच्छा, मैंने सुना राज कपूर साहब का ये लकी सिनेमा हॉल माना जाता था, क्यों?
राज कपूर की सारी पिक्चर यहाँ रिलीज होती थी और राज कपूर के जो पहले यहाँ मालिक थे उनसे ताल्लुकात भी फैमिली टाइप के थे, इसलिए जो पिक्चर रिलीज हुई वो रीगल में जरूर आई है।
और जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो कुछ खास होता था?
खास क्या, कई पिक्चर में यहाँ प्रीमियर होता था, प्रीमियर में राज कपूर और उसकी सारी टीम आती थी, आकर के वो स्टेज पर हवन कराते थे। जिस दिन पिक्चर रिलीज होती थी उसी दिन वो आते थे, 9:30-10 बजे करीब यहाँ हवन कराते थे, एक रील चलवाते थे और हॉल को बहुत अच्छी तरह से फूलों से सजाया जाता था। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है।
और कैंटीन की खास बात थी जो यहाँ खाने की चीज़ें होती थी, शुक्ला जी ने बताया और मेरे मुंह में पानी आ गया।
पहले हमारे समोसे बनते थे, देखिए आपको, और बहुत मशहूर समोसे, सामी कबाब हमारे होता था, कटलेट होती थी, ब्रेड पकौड़ा होता था, आलू बोंडा होता था, हमारा अपना बना हुआ।
अब रीगल के इन 660 सीटों के सिनेमा हॉल को हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आ जाएगा, शायद 4 स्क्रीन्स होंगी। कनॉट प्लेस का रीगल सिनेमा हमेशा लोगों को याद रहेगा। वैभव दीवान, BBC हिंदी, रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस से।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की 44 साल पुरानी सदस्यता खत्म करने के लिए औपचारिक रूप से पत्र भेज दिया है। इसके साथ ही 2 साल चलने वाली बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें भविष्य के लिए यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंधों की दशा दिशा तय होगी। यूरोपीय संघ ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज और जर्मनी के डॉयचे बॉयज के प्रस्तावित विलय पर रोक लगा दी है। भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST से जुड़े 4 बिलों को पेश किया है। भारत में अफ्रीकी छात्रों के एक संघ ने अपने सदस्यों को दिल्ली के पास नोएडा के अपने घरों में रहने की चेतावनी दी है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता अहमद कथरादा को जोहानिसबर्ग में दफनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहुचर्चित 3 भाइयों के हत्याकांड में 6 आरोपियों को कोर्ट से बरी करने के बाद उनके परिवार ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।